जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बन जमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा
जय जय विष्णुपाद परम शुभ परिव्राजकाय जय जय श्रीस्तर सरस्वती श्री 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 श
জানিতাই গৌর প্রেম আনন্দে হরি হরি বল জানিতাই গৌর প্রেম আনন্দে হরি হরি বল জানিতাই গৌর প্রেম আনন্দে হরি হরি বল ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরহে নষ্ট প্রায়ষু অবস্থেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবতীর উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভাবতী নিষ্ঠিতি গ্রন্থরাশ্রম ভাগবতম স্কন্ধ দশ অধ্যায় সাত শ্লোক সংখ্যা ষোল টেন সেভেন সিক্সটিন গাবা সর্বগুণা উপেতা রুক্মমালিনী আত্মজ অভ্যুদ্ধায় অর্থায় প্রাদাতে চ অন্নযুঞ্জত গাব সর্বগুণোপেতা বাসস্বকরূপমমালিনী আত্মজ বুদ্ধায় অর্থায় আত্মজ বুদ্ধায় অর্থায় রাদত্তে চ অন্নযুঞ্জত গাও সর্বগুণপ্রেতা গাও সর্বগুণপ্রেতা বাসস্বকরূপমমালিনী আত্মজ বুদ্ধায়ার্থায় প্রাদত্তে চ অন্নযুঞ্জত গাও সর্বগুণপ্রেতা গাব সর্বগুণপ্রেতা বাসস্বকরূপমমালিনী আত্মজ বুদ্ধায় অর্থায় প্রাদত্তে চ অন্নযুঞ্জত সর্দার গাব গাই সর্বগুণ উপেতা পর্যাপ্ত দুধ দেনে সে অত্যন্ত গুণী হনে বাস আচ্ছে বস্ত্র পহনতে হে সত মালা সে যুক্ত রুক্ম মালিনী তথা সোনে কে হার পহনতে হে আত্মজ অভ্যুদ্ধয় অর্থায় आपने पुत्र के अभ्युदय हेतु प्रादत्त दान में दिया ते उन ब्राह्मणों से च भी अन्न युञ्जत उन्होंने स्वीकार किया। श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य, नंद महाराज ने आपने पुत्र को धन वैभव हेतु ब्राह्मणों के दान में गव दी जो वस्त्रों फूल मालाएं तथा सुन हरे हारों से सजाई गई थी। ओ गायों जो प्रचुर दूध देने वाले थी ब्राह्मणों के दान में दो गई थी और ब्राह्मणों ने उन्हें शिकार किए। बदले में उन्होंने समूचे परिवार के तथा विशेष रूप से कृष्ण को आशीर्वाद दिया। तात्पर्य, नंद महाराज ने पहले ब्राह्मणों को मान्य दातक दी और तब सुन हरे हारों वस्त्रों और फूल की मालाओं से सजी उत्तम कोटि की गायों दान दे दी। ओम अज्ञानमिदमिदंश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजितपदकामलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शकुलजातं शवनो रघुनतान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीशखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्वदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरदिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी दिशवानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं कुर्तिवाचलं भुङ्गं मुण्डते गिरिञ्जति पातुमं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी से दो लाइन में तात्पर्य को खत्म कर दिया और पिछले वाला श्लोक में प्रभुपाद जी लगभग तीन पत्ता तक, मतलब तीन पेज प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे थे। ये है प्रभुपाद जी का क्रेडिबिलिटी, मतलब कृतित्व जिसको बोलते हैं। पहले वाला श्लोक जो कि कल का श्लोक था, सुदर्शन गुरु ने बड़ा अच्छे तरीके से उनको बताए भी थे कि तीन तीन पेज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विश्लेषण किया। आज इतने बड़ा तात्पर्य पढ़ने के बाद ज्यादा कुछ बोलने का भी जरूरी नहीं था, जिसके लिए कल सुदर्शन गुरु ने पूरा तात्पर्य पढ़ने के बाद एक दूसरा टॉपिक्स को पकड़ लिए थे। और आज का जो श्लोक है जो कि इसके संबंधित जितने श्लोक आगे चलते और दो श्लोक भी है, तो इस श्लोक पर प्रभुपाद जी से दो लाइन में इसको खत्म भी कर दिया। इसको पर वर्णन किया कि नंद महाराज अपना पुत्र को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाए। कौन सा ब्राह्मण को बुलाए? जिस ब्राह्मण का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उसी को कर ब्राह्मण को बुलाया। क्योंकि भगवान कृष्ण को उनको कोई जरूरी नहीं था आशीर्वाद लेने का। फिर भी नंद महाराज एक आध्यात्मिक विधि से ब्राह्मणों को बुलाए। तो फिर ठाकुर इसको बोलते थे कि पाप और पुण्य, जो व्यक्ति सत कर्म करते हैं उसको स्वर्ग लाभ मिलते हैं। इस श्लोक का ऊपर मतलब इस अध्याय का ऊपर भक्तिवीर ठाकुर का चैतन्य शिक्षा ग्रंथ में भक्तिवीर ठाकुर विस्तृत रूप से इसको वर्णन किए। तो आज मैं प्रयास करूंगा वही भक्तिवीर ठाकुर का चैतन्य शिक्षा इस ग्रंथ में जिस तरीका से उन्होंने वर्णन किए उसी तरीके से वर्णन करने के लिए। तो भक्तिवीर ठाकुर इसी ग्रंथ में वर्णन की कि पाप और पूर्ण, दान देना पड़ता है किसी को जो व्यक्ति दान का योग्य हो, अपात्र दान और सुपात्र दान। अपात्र और सुपात्र मतलब सुपात्र का अर्थ होता है जहां पे दान देने जो व्यक्ति दान ग्रहण करने का लायक है, और अपात्र दान मतलब जो व्यक्ति दान ग्रहण करने के लिए लायक नहीं है, मतलब उसको कोई कला नहीं है कि वो दान ग्रहण कर सकता। और सुपात्र मतलब जो व्यक्ति योग्य है दान ग्रहण करने के लिए। तो नंदमार ने इसलिए उसी प्रकार योग्य ब्राह्मण को बुलाए थे जो कि दान ग्रहण करने का लायक है। गोपाल जी इसको बड़े वर्णन कर रहे कि जब हम लोग रास्ते में जाते हैं, कोई व्यक्ति रास्ते में अपना गाड़ी चलाकर ड्राइविंग करके जा रहा है तो कोई सिग्नल आ गए तो गाड़ी रुक गए, तो आप भी देख सकते कि बंबई का रास्ते में ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जहां पर गाड़ी रुकने के बाद एक दो तीन चार करके भिखारी नहीं आते आपको बस भीख मांगने के लिए। एक से एक भिखारी आपको पास पहुंचे। अगर गाड़ी का दरवाजा आपका बंद है पूरा, अंदर में आपका एसी भी चल रहा है तो गाड़ी का दरवाजा बंद है तो गाड़ी का दरवाजे के सामने ठक 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 करते रहे। जब आपने अचानक देख लिया कि कोई ठक ठक कर रहे तो आपने देखा तो वो आपको पास भीख मांगते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बड़े वर्णन किया कि उसी प्रकार व्यक्ति दान देना मतलब अपात्र दान देना होता है। उसी प्रकार व्यक्ति को आपने दान दे दिए मतलब आपने अपात्र दान दे दिए। अपात्र तेल वर्जन पर होता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताया इसको कि उसी प्रकार व्यक्ति को आपने दान दी तो मतलब उसी दान अपात्र दान करते हैं। क्यों ना आपने उसी प्रकार व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आ गए कोई लुंगी कोई मतलब किसी का आंख नहीं है, कोई हाथ टूट गए पाए टूट गए, उसी प्रकार व्यक्ति आया आपका सामने, आपने देखकर उसके ऊपर आपका दुख है तो दुख के कारण आपने उनको कुछ दान दिए। तो पति कहते जिसी प्रकार उसी प्रकार व्यक्ति जिसका एक पैर कट गए कोई आंख नहीं है पूछे मतलब वो पाप कर्म किए इसका फल उनको भोगना पड़ता है, और उसी पापी व्यक्ति को दान देना मतलब आपने अपात्र में दान किए। तो नंद महाराज किसी प्रकार अपात्र व्यक्ति को दान नहीं किए। सुपात्र दान उठाया, सुपात्र व्यक्ति को उन्होंने दान किए जिस व्यक्ति के दान का माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। नंद महाराज इसके लिए सुपात्र ब्राह्मण को बुलाया जिस ब्राह्मण का ताकत है आशीर्वाद देने का, जिस ब्राह्मण का शरीर में ऐसा कुछ बल व शक्ति है जिसके द्वारा वो दान को ग्रहण भी कर सकते हैं और साथ साथ दान ग्रहण करने के बाद वो आशीर्वाद भी दिला सकता है, इसी को कर ब्राह्मण को बुलाया। भक्तिवीर ठाकुर इसके ऊपर वर्णन कर कि पूर्ण कर्म और पाप कर्म मतलब जो व्यक्ति असत कर्म करते हैं उसको नरक भोगना पड़ता है, नरक में जाने का निश्चित रूप से उनको पास कंफर्म टिकट। आज जो व्यक्ति कोई अच्छा काम किए तो उनको स्वर्ग जाने के लिए निश्चित रूप से टिकट मिलता है। जैसा कोई व्यक्ति अगर कोई परिवार में कोई गुजर जाता है ना, तो आज के दुनिया में ऐसा फैशन हो गए कि आपका परिवार में अगर कोई व्यक्ति गुजर जाए किसी का मृत्यु हो गए तो दूसरा दिन आपने पेपर में उसका फोटो डालकर बहुत सारे भगवदगीता का श्लोक बताकर स्वर्ग लाभ उत्तिष्ठी स्वर्ग लाभ उत्तिष्ठित जागृत हो ऐसा बहुत सारे श्लोक कोटेशन वगैरह डाल देते हैं। तो मतलब यही होता है कि जिनको स्वर्ग लाभ होता है उन्होंने ऐसा कोई पूर्ण कर्म की थी जिसके लिए उन्होंने स्वर्ग लाभ लिया। आज जो कुछ पाप कर्म युक्त हो गए उनको नरक जंतना भोगना पड़ता। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस पूर्ण कर्म को 10 भाग में उन्होंने विभाजित किया। बड़े अच्छे रूप से भक्तिविनोद ठाकुर इसको वर्णन भी की कि इस पूर्ण कर्म को 10 भाग में उन्होंने विभाजित किया। पहला जो भाग है पूर्ण कर्म का 10 भाग, उन्होंने वर्णन की कि न ही कश्चित खनमपि जातु तिष्ठत कर्मोक्ति। अपना कर्म का हिसाब से न ही कश्चित ऋण मोक्ति जातु तिष्ठत कर्म की ताज्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जुग युग नहीं। मतलब अपना कर्म का अनुसार आपको भोगना पड़ता। तो इसको कहते कि पूर्ण कर्म, जिस तरीका से आपने कर्म किए हो उसी तरीका से आपको फल मिलता है। तो बाद में उन्होंने वर्णन की कि कर्मण्य कर्म ज ही पूर्ण कर्म हितादोषी तपन है। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गोनिताय की जय। इस पूर्ण कर्म का भक्ति ने ठाकुर 10 प्रकार विधि बताए। इस पूर्ण कर्म का 10 प्रकार का विधि होती है। पहला जो वर्णन किए है वो उसका नाम है परो उपकार, दूसरे व्यक्ति को उपकार करना। किस तरीका से वो कहते इस परो उपकार को वर्णन भी किए कि आपने दूसरे कोई व्यक्ति को बिना सोचकर आपने उनके लिए कुछ करना चाहते हो, जिसके लिए आपने उनको कुछ प्रकार दान दे दिए हो, इसको कहते कि परो उपकार। और ये जो पूर्ण कर्म ये 10 प्रकार विधि भक्तिविनोद ठाकुर बताए, तो पहला है परो उपकार, दूसरा है गुरुजन सेवा, तीसरा है दान, चौथा आतिथ्य, पांचवा है पावित्र, छठवा है महोत्सव, सातवा है व्रत करना, आठवां नंबर में है पशुपालन, नवम है जगत विद्धि और दसवां है नए आचरण। इस 10 प्रकार का पूर्ण कर्म का वर्णन शास्त्र में बनी है। और भक्तिविनोद ठाकुर इस 10 प्रकार पूर्ण कर्म को विस्तृत रूप से बनी थी। पहला पूर्ण कर्म कौन है ना, परो उपकार, दूसरे को कुछ दान देना, मतलब दूसरे को कुछ उपकार करना, टू हेल्प देम द पीपल, टू हेल्प इन द कम्युनिटी, टू हेल्प इन द सोसाइटी, लाइक दैट। तो कहते हैं कि परो उपकार ये भी दो प्रकार में उन्होंने विभाजित की। परो उपकार तो दो प्रकार में विभाजित की। पहला परो उपकार का नाम है दूसरे का कष्ट निवारण। पहला परो उपकार जो है यह है दूसरे का कष्ट निवारण। दूसरा परो उपकार का नाम रखा है उन्नति साधन, दूसरे के लिए उन्नति साधन करना। दूसरे का कष्ट साधन मतलब भक्तिविनोद ठाकुर का टीका का ऊपर प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य विश्लेषण की कि कष्ट निवारण मतलब कि आपने रास्ते से जा रहे हो, आपने कोई व्यक्ति को देख रहे कि बड़ा दुखी है, संसार चला नहीं पाते, इसी तरीके से रास्ते में आ गए, रास्ते में कोई पेड़ का नीचे बैठ के एक थाली लेकर भीख मांग रहा है, तो इसी प्रकार व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक रूप से आपको मन में दुख आ गए, तो उसी प्रकार व्यक्ति को आपने कुछ दान दे दिए, इसको कहते हैं कि पड़ेर कष्ट निवारण, मतलब दूसरे के लिए कष्ट होकर उसको निभाने के लिए आपको प्रयास करना, इसको कहते हैं कि कष्ट निवारण, दूसरे व्यक्ति का कष्ट निवारण। और बताए कि दूसरे का उन्नति साधन, दूसरे का उन्नति साधन किस तरीके से प्रभुपाद जी इसको वर्णन की कि दूसरे का उन्नति साधन का अर्थ होता है कि दूसरे कोई व्यक्ति कोई अच्छे पढ़ाई लिखे किए लेकिन कोई ना कोई तरीका से उनको कोई सर्विस वगैरह कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो दुखी है, वो सोच रहे कि मैंने इतना तक मैंने पढ़ाई किया हूं लेकिन आज तक मेरे को कोई नौकरी नहीं मिला है, मेरा पिताजी ने बैंक से लोन लिए, मेरा पिताजी ने बैंक से एजुकेशन, आजकल तो एजुकेशन लोन मिलता है बैंक में सबको पता है, तो हमारा पिताजी ने इतना मेहनत करके बैंक से एजुकेशन लोन लेकर मेरे को इतना पढ़ाई करा है लेकिन इतना पढ़ाई करने के बाद भी मैंने इतना सर्टिफिकेट को मैंने प्राप्त किया हूं, लेकिन उसी प्राप्त करने के बाद भी मेरे को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मेरा इसी तरीके से कष्ट को देखकर कोई सज्जन व्यक्ति आकर मेरे को मदद कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि दूसरे को उन्नति साधन। ये भी एक प्रकार का पूर्ण पर्व है। तो आपका धूप को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति आपका सामने आए, जैसे कि आपने बहुत सारे आपने डिग्री को प्राप्त कर ली हो, बहुत पढ़ाई की हो, आपका पिताजी ने आपको बैंक से लोन लेकर एजुकेशन लेकर बहुत सारे डिग्री प्राप्त करा दिए, लेकिन आपको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा, तब आपका मन में दिक्कत आ गई जो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है मेरा सामने, नथिंग है, दिस सर्टिफिकेट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मैंने ये सर्टिफिकेट के द्वारा कोई नौकरी नहीं मिले तो इसका वैल्यू बिकम इज जीरो, मतलब शून्य कमाफी हो जाता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू लेस। तब आपका दुख को देखकर कोई एक सज्जन व्यक्ति आकर आपको कुछ सलाह दिए, इसी सलाह को कहते हैं कि परेरो उन्नति साधन, दूसरे व्यक्ति का उन्नति करना, दूसरे को जाकर आपने मदद किए हो, इसको कहते हैं कि उन्नति साधन। ये भी एक प्रकार का पूर्ण कर्म है। बाद में भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन की पूर्ण कर्म का दूसरा जो अध्याय है, इसको कहते हैं कि गुरुजन सेवा, जो आज का दिन में सबसे ज्यादा आलोचित वस्तु होता है, आलोचित विषय हेवी डिस्कस होता है गुरुजन सेवा का। जैसे कोई परिवार से अगर कोई व्यक्ति साधु संत महात्मा बन गए, परिवार को छोड़कर आ गए, मंदिर में फुल टाइम बने, तो आकर कोई दूसरा व्यक्ति आके पूछते, उनके गांव वाले आए आके पूछते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड टेक की योर पेरेंट्स, आपको पिता माता ने आपको इतने अच्छे तरीके से पाला, आपने माता ने 10 मास 10 दिन आपका घर में जाकर आपको जन्म दिए, आज उसी पिता माता को छोड़कर आपने मंदिर में आ गए हो, मंदिर में आकर अपने ब्रह्मचारी बनकर आपने कुछ कर्तव्य नहीं किए हो पिता माता को, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर पेरेंट्स, इसको कहते कि गुरुजन सेवा। तो गुरुजन सेवा को भी भक्तिविनोद ठाकुर तीन प्रकार वर्णन किए, ये भी एक प्रकार का पूर्ण कर्म है। हे गुरुजन सेवा, भक्तिविनोद ठाकुर तीन प्रकार वर्णन किए, किस तरीके से, माता पिता को पालना तथा उनका सेवा करना, ये भी एक प्रकार गुरुजन सेवा। दूसरे गुरुजन सेवा क्या है, उपदेष्टा दिगे पालन एवं सेवा, जो व्यक्ति आपको अच्छा सलाह देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका सर्टिफिकेट है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दी, गो टू दैट ऑफिस, सम वैकेंसी इज देयर, आप जाओ कोई भी ऑफिस में जाकर देखो, उधर कुछ वैकेंसी है, आप जाकर उधर काम आपको मिल सकते हैं। इसको कहते कि सज्जन व्यक्तिर उद्देष्टा सहिता, भक्तिविनोद ठाकुर सज्जन व्यक्तिर उद्देष्टा सहिता, मतलब दूसरे व्यक्ति आकर आपको अच्छे सलाह दिए, इसको कहते कि सज्जन व्यक्ति। तो तीसरे वर्णन किए गुरुजन सेवा में, सर्व गुरुजन ससम्मान सेवा, मतलब कोई भी ज्येष्ठ व्यक्ति को आपको रिस्पेक्ट देना है, उसको मान देना है, लेकिन आपने को मान नहीं मानना है। महाप्रभु कहते हैं कि अमानिना मानो देना फिर तनिया सलाह, दूसरे को मान देना लेकिन आपने खुद के लिए मान नहीं मानना। लेकिन आज का दिन में तो बड़ा मुश्किल होता है कि हार व्यक्ति चाहते मेरा नेम फेम हो जाए अच्छे तरीके से, एवरीबडी वांट्स देयर नेम एंड फेम एंड एवरीथिंग दे वांट दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। गोपाल जी कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक पीपल दे वांट देयर नेम एंड फेम, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेम एंड फेम दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, मतलब आज का दिन में भौतिक व्यक्ति हर समय नाम जश चाहते हैं, और इसी नाम जश के कारण व्यक्ति आपस में लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, नामो जश प्रतिष्ठा शुकर एरो विष्ठा छाड़िया से जारे सही तो वैष्णव, मतलब वैष्णव वही बन सकते हैं जो कि नाम जश के पीछे कभी नहीं भागते। नामो जश प्रतिष्ठा शुकर एरो विष्ठा, विष्ठा मतलब महिला होती है, धूल, जो कि धूल मतलब एक प्रकार का वर्ज्य वस्तु जिसको कहते हैं, नाम जश प्रतिष्ठा शुकर एरो विष्ठा छाड़िया से जारे सही तो विष्णु, शुकर मतलब पिग, पीप क्या करते हैं ना, एक जंगल में जाकर दूसरे जंगल में घूमते रहते कि कहाँ ऐसा कोई वस्तु मिले, कोई गंदा वस्तु मिले जिसके द्वारा मैं आपको जीवन को मैं बिगाड़ सकता हूँ। इसके लिए भक्ति संस्कृत को गाते हैं, नाम जश प्रतिष्ठा सुको रेर विष्ठा सारी आचे जारे से तो और भौतिकवादी व्यक्ति क्या चाहते हैं, नाम जश चलिए। लेकिन महाप्रभु ज्ञान अमानी ना मान देना, दूसरे को मान देना है, आपने को लिए मान नहीं मांगना है। तो सर्व गुरुजन सेवा तथा उनको मान देना। आज चौथा जो उन्होंने वर्णन की है उसको है दान। पुण्य कर्म में तीसरा जो अध्याय वर्णन है उसको नाम है दान। तो दान किसको देना चाहिए, दान तो कहते कि अयोग्य पात्र दान आज सुपात्र दान, सुपात्र दान आज कुपात्र दान। जो सुपात्र मतलब कि योग्य व्यक्ति होता है, दान लेने का लायक जो है, जिसके पास क्षमता है, बल है, शक्ति है कि मैं दान को ग्रहण कर सकता हूं, तो उसी को कर व्यक्ति को दान देना चाहिए। जिसके लिए नंद मोहन ने सुपात्र को बुलाए, सब आवनम सुपात्र उपाधन। तो उन्हें सुपात्र को बुलाया, सुपात्र कौन है, जो कि दान लेने के लिए लायक है, ऐसा सुब्राह्मण को उन्होंने बुलाया। तो भाजी इसको वर्णन की आज का मापी के तीन पैसे का जिनुई लगाने वाला ब्राह्मण नहीं, सुपात्र ब्राह्मण तत्व आवरण। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद इसको वर्णन किए, सुपात्र ब्राह्मण तत्व आवरण। उसी प्रकार ब्राह्मण को उन्होंने आह्वान किए थे, आमंत्रण दिए थे कि जिसके लायक होता है दान ग्रहण करना, हाथ व्यक्ति लायक नहीं रहता है दान देने। और इसी दान को भक्त विनोद ठाकुर 12 प्रकार में विभाजित किया, सॉरी 10 प्रकार में उन्होंने विभाजित किया। दान को कहते कि 10 प्रकार दान होती है। अगले महीना विद्या दान आ रहा है, ये भी 10 प्रकार दान में एक मुक्ष दान करते हैं, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी दिसंबर महीने को विद्या दान हिसाब से प्रतिष्ठित किए समाज में। ये विद्या दान 10 प्रकार दान में एक मुक्ष दान है, विद्या दान। तो जो 10 प्रकार दान का सॉरी 12 प्रकार दान का जो वर्णन की है, ये पहला दान है कूप खनन के द्वारा जल दान। जैसा कोई तृष्णार्त व्यक्ति पियास लग गए उनको, आपने उनको प्यास को निभाने के लिए एक कुआ बनाया, कुआ तो कुआ बनाकर उसी कुआ के द्वारा पानी जो निकलते उसी पानी के द्वारा कोई तृष्णार्त व्यक्ति, कोई पिपास व्यक्ति जिनको प्यास लगे उन्हीं उसी प्रकार व्यक्ति का अपने जल दान किए, ये भी एक प्रकार का दान जो कि पुण्य कर्म में आता है। और दूसरे दान का वर्णन किया कि उपयुक्त स्थान में कोई अच्छे जगह में वृक्षारोपण करना, ये भी एक प्रकार का दान। तो द्वादश प्रकार दान वर्णन की कि पहला दान है कि कूप खनन के द्वारा, कुआ खनन के द्वारा जल दान। दूसरा दान है वृक्षारोपण, एवं वृक्षारोपण के द्वारा उनको छाया दान तथा वायु दान। आपने एक बहुत ही जैसा आजकल होता है ना कि हर जगह में बड़ा बड़ा नेता लोग आता है, बड़ा बड़ा व्यक्ति आते हैं, आकर कोई जगह में रोड में आकर वृक्षारोपण बना देते हैं, कोई पेड़ लगा दिए। इसी पेड़ लगाने एक प्रकार दान है, ये भी एक प्रकार का पुण्य कर्म है कि उसी पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसी पेड़ का नीचे बैठ के आप उसका हवा आप ले सकते हो। और दूसरा है उसी पेड़ में छाया में बैठकर आप थोड़ा आराम भी कर सकते हो, विश्राम भी कर सकते हो, ये भी एक प्रकार का दान है, ये भी पुण्य कर्म में आता है। तो तीसरा दान वर्णन किए कि उपयुक्त स्थान में दिया दान। भक्ति ने ठाकुर इसको वर्णन की कि उपयुक्त स्थान में जाकर दिया दिखाना, यह भी एक प्रकार का दान होता है। इसके ऊपर वर्णन किए भक्ति ने ठाकुर कि जे कार्तिक महीना में जैसे कि हम लोग दिया दान करते हर जगह में, तो ये दिया दान सिर्फ कार्तिक महीने के लिए नहीं, पूरा साल भर कोई भी अच्छी जगह में आपने गए, कोई ठाकुर जी का कोई विष्णु मंदिर में आपने गए, उसी जगह में जाकर आपने दिया दान कर सकते हो। और इसी दिया दान का माध्यम से भक्तों ने ठाकुर इसमें वर्णन भी की है कि इसी दिया दान का माध्यम से आपने अपना 14 पीढ़ी तक आपने उद्धार कर सकते हो, इसी दिया दान का माध्यम। तो तीसरी प्रकार दान बंधन के कि उपयुक्त स्थान में दिया दान। चौथा है औषध दान, मतलब दवाई, मेडिसिन जिसको बोलते हैं। और ये औषध दान किस तरीका से होता है? ये औषध दान भी भक्तिनाथ ठाकुर दो प्रकार इसको वर्णन किए, दो प्रकार में इसको विभाजित किए। किस तरीका से? कोई हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति है, जैसा कोई होता है ना, कोई शुभ दिन आता है, किसी का कोई जन्मदिन है, कोई बड़ा बड़ा मुनि ऋषि मुनिषी का कोई जन्मदिन होता है, तो नेता लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, जाकर जितने सारे बीमारी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो उसी प्रकार व्यक्ति को फल के साथ कुछ दवाई वगैरह लेकर आते हैं। और क्या होता है आज का दिन में सबसे बड़ा जो होता है जो आई कैम्प, चक्षुदान शिविर, आई कैम्प बनाते हैं हर जगह में, कोई डॉक्टर जाते हैं जाकर उनकी जगह में आई कैम्प बनाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं कि एक प्रकार ये दान, ये भी एक प्रकार औषध मतलब दवाई दान बोलते हैं। और एक प्रकार दान है, औषध दान को दो प्रकार में विभाजित की भक्तिनाथ ठाकुर। एक है कि जो बीमारी व्यक्ति को दवाई देना, एक प्रकार दान है। और है जो आपने कुछ मतलब फैक्ट्री बना ली, मेडिसिन का कुछ फैक्ट्री बनाया, कुछ लेबोरेटरी बनाया, कुछ फैक्ट्री बना ली, उसी फैक्ट्री में दवाई प्रस्तुत करके उसी दवाई को कोई गरीब व्यक्ति को दान दिए, ये भी औषध दान का अंदर आ जाता है। इसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर दवाई दान को दो प्रकार में उन्होंने विभाजित किया। और इसके बाद आए औषध दान के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है विद्यादान। ये विद्यादान को भक्तिविनोद ठाकुर चार प्रकार में विभाजित किए। विद्यादान, विद्यादान भी एक पूर्ण कर्म, लेकिन इस विद्यादान को भक्तिविनोद ठाकुर चार प्रकार में विभाजित किए। पहला जो नाम लिखा है उसका है अति पूर्ण विद्यादान। इस अति पूर्ण विद्यादान का अर्थ होता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बुद्धिमान लड़का है, भगवान ने उसको अच्छा दिमाग लगाया है, लेकिन उनके पास कोई अर्थ नहीं है, धन नहीं है, जिस धन के द्वारा वो कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, तब उसी प्रकार व्यक्ति को कोई सज्जन व्यक्ति जाकर कुछ किताब करके खरीद करके देते हैं, उसको कहते हैं कि अति उच्च दान। अति उच्च दान। आज दूसरा दान सुपात्र दान। सुपात्र मतलब जो योग्य व्यक्ति है, जिसको कि जिस तरीके से नंद महाराज ने ब्राह्मण को बोले कि जो सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण रुचि संभव, सुपुत्र ब्राह्मण रुचि संभव, तो उसी प्रकार व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, इसका सुपात्र दान। और एक प्रकार विद्या दान है, जिस विद्या के द्वारा आपने दूसरे को कुछ सिखा सकते, जैसे आपने कुछ पढ़ाई की है, आपने बहुत पढ़ाई करने के बाद आपने जाकर किसी को ट्यूशन ले जाओ, जैसे कहते हैं ना आज का दिन में तो फैशन भी हो गया कि बच्चे स्कूल में जाने के बाद ही एकदम ट्यूशन में देना ही पड़ता है। ट्यूशन इज कंपल्सरी फॉर द ह्यूमन बींग राइट नाउ। आज का दिन में तो ट्यूशन देना एकदम जरूरी हो गया। पहले जमाने में ऐसा था कि माता पिता बच्चे को प्राथमिक स्तर मतलब प्रीमियर स्टेज, प्राइमरी स्टेज जिसको बोलते हैं, वो तक बच्चा को आपने घर में पढ़ाते थे। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, माता पिता चले जाते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, और बच्चा को रखना पड़ता है आपको तीर्थ हाउस, जैसे कि तीर्थ हाउस हर जगह में है, प्ले ग्रुप जिसको बोलता है प्ले ग्रुप। 2.5 साल का बच्चा, इसमें विनर बनन भी की है कि एक 2.5 साल का बच्चा क्या सीख सकता है स्कूल में जाकर? कुछ भी नहीं, इट डजंट नो एनीथिंग एल्स। लेकिन फिर भी माता पिता उसको कहां भेज देते हैं ना, प्ले ग्रुप में जाना पड़ता है। प्ले ग्रुप जिसका घर में छोटे बच्चे, उनको पता होगा कि प्ले ग्रुप का जो उम्र होना चाहिए दैट इज कॉल्ड 2.5 ईयर्स, दैट इज कंपल्सरी। मतलब 2.5 साल उम्र में बच्चे को प्ले ग्रुप में डालना पड़ता है। आज से 20-25 साल पहले भी कोई माँ बाप सोच भी नहीं था कि बच्चे को 2.5 साल में स्कूल ले डालना। यानी बच्चे को डालना पड़ता था कितने साल में? 4 से 5 साल उम्र में। 5 साल उम्र में डालने से वो बच्चा 16 साल में 10 क्लास पढ़ाई कर सकता, तो उसका ब्रेन काम करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गए हल फसल दुनिया में, बच्चों को 2.5 साल उम्र में डालना पड़ता है कहां पे ना, प्ले ग्रुप में डालो, बाद में उसको किड्स में लेकर आओ, फिर स्टैंडर्ड 1, फिर स्टैंडर्ड 2, देन क्लास 1। नर्सरी एक से एक विभाजित की है। अब देखिए कोई बच्चा 2.5 साल उम्र का कोई बच्चा को आपने स्कूल में भेज दिए प्ले ग्रुप में, उसका वजन अगर 5 किलो है, उसका वजन 5 केजीस है, तो उसको पीछे जो एक बैग रहता है ना, बैग वाटर बोतल ये सब मिलाकर खाना पीना सब कुछ रहकर उसका वजन हो जाता है 7 किलो का। बच्चा ऐसे झुक जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, कभी भी आपने कोई स्कूल के सामने प्ले ग्रुप स्कूल कोई स्कूल के सामने जाकर खड़ा होकर देखिए, जो बच्चे झुक गए एकदम, इतना वजन लेना पड़ता है फीट में, उसका वजन 5 किलो, लेकिन उन्होंने जो बैग लेकर जा रहा है उसका वजन 7 किलो गए, झुक गए पूरा। ऋषि को का ज्ञान प्राप्त नहीं करता। भक्तवृंद ठाकुर इसको वर्णन भी किए हैं कि इसको कहते हैं कि अति पवित्र दान, आज सबसे पवित्र जो सुंदर पवित्र दान जिसको है, 4 नंबर दान जिसको है, सुंदर पवित्र दान उसको है कि विद्यादान। इस विद्यादान का अर्थ होता है कि जिस दान के द्वारा आपने अपना आध्यात्मिक जीवन तथा भौतिक जीवन को आनंदमय अपने बना सकते हो, जिसको कहते हैं कि अति पवित्र सुंदर दान। आज भक्तिवेन ठाकुर इस अति पवित्र सुंदर दान को और एक नाम रखा है जिसका नाम है हृदयग्राही दान। हृदयग्राही दान की उपयोगता है ना, जिस दान के द्वारा अपना हृदय अपना चित्त को आपने शुद्धि कर सकते हो, जिसको कहते हैं कि हृदयग्राही दान। तो विद्या दान को उन्होंने 4 भाग में विभाजित की। 4 भाग में सबसे ऊंचा कोटि जो दान है जिसको कहते हैं कि हृदयग्राही दान, मतलब विद्या दान का सबसे ऊंचा कोटि दान है हृदयग्राही दान, जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक दान। इस आध्यात्मिक दान किस तरीका से, जैसे कि आपने कोई आध्यात्मिक ग्रंथ लिए, उसी आध्यात्मिक ग्रंथ आपने दूसरे को बांट रहे, दूसरे को आपने दान दिए, और उसी आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने के बाद वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और साथ साथ उसमें जो शिक्षा वो प्राप्त कर सके, उसी शिक्षा के द्वारा वो भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ सके, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने सबसे अधिक गुरुत्व दिए कि आध्यात्मिक दान, जिसको कहते आध्यात्मिक विद्या दान उदारो चित। और इसी आध्यात्मिक जीवन के द्वारा आपका हृदय शुद्धि हो जाए। इसके ऊपर गोपाल जी वर्णन किए कि अगर आपने किसी को मिलने के लिए गए, उनको आध्यात्मिक धन को समझ रहे, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, गोपाल जी का ग्रंथ ऐसा है कि सारा पूरा विश्व में इतना क्यों प्रचार हो रहा है, प्रचार होने का एक ही कारण था कि आपने कोई व्यक्ति के पास गए ग्रंथ लेकर, लेकिन उनको पास ज्यादा समय नहीं, वो कह दिए कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट हैव एनी टाइम, वी हैव लॉट ऑफ सर्विस, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट गिव यू द मच टाइम, सिर्फ 2-3 मिनट आपको दे सकते हैं। तो 2-3 मिनट में आपने कितना आध्यात्मिक ज्ञान उसको दे सकते हो, 3 मिनट में बताओ। 3 मिनट में अगर आपने इतनी भगवद गीता का श्लोक भी बता दिए, तो भगवद गीता का श्लोक बताने के बाद भी आपने बताया कि यत करो श्री यदृष्णाशी यद यद श्री ज्यादा श्री यद, आपने ये श्लोक का अगर अर्थ नहीं बताए तो उसका सामने वैल्यू ले, जिसके लिए श्री प्रभुपाद जी का ग्रंथ का इतना वैल्यू है। क्यों ना, आप अगर आपने गए कोई व्यक्ति के पास, इतने बिजी व्यक्ति होने के बाद भी उनके पास अपने ग्रंथ लेकर गए प्रभुपाद जी का, लेकिन उनको समझ नहीं है किताब के अंदर क्या है क्या नहीं है देखने के लिए, जिसके लिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ के ऊपर सुंदर से सुंदर चित्र बना है, जिस चित्र को देखकर कोई भी पाखंडी व्यक्ति भी हो तो मुग्ध हो जाता है, वो सोच लेता है इतना सुंदर जो चित्र है वो किताब का एकदम शुरू में, तो इसका अंदर कितना सुंदर से सुंदर चीज हो सकता है, तो चलो मैंने खरीद कर लेता। विदेश में जब भक्त लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए, विशेष रूप से रशिया में, तो रशिया में जर्मनी में इसी जगह में यूरोप कंट्री में, तो इसी तरीके से प्रचार होता है कि किताब का अंदर क्या है वो नहीं बताते। पहले वो क्या दिखाते कि देखो हमारा किताब क्यों अट्रैक्टिव है, व्हाई आवर बुक्स इज सो अट्रैक्टिव फॉर द ह्यूमन बीइंग, इसका एक ही कारण है कि इसका अंदर जितने से सुंदर चित्र है, तो इसी चित्र को देखकर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं। तब उन्होंने सोच लेते हैं, भगवान उनको प्रेरणा देते कि देखो इतने सुंदर जो किताब का मुखबंध में जो शुरू में इतने सुंदर चित्र जब रह सकते हैं, तो इसका अंदर क्या भी नहीं है। तब तुरंत उन्होंने इस ग्रंथ को खरीद कर लिया। तो ये विद्यादान के ऊपर गए। विद्यादान के बाद वर्णन किए कि अन्नदान, अन्नदान तो सबको पता है कि सबको खिलाना, ये भी एक प्रकार का दान है। आज सात नंबर में बताया कि पंथदान, पंथदान करते होता है भक्तेश्वर ठाकुर बहुत ही अच्छे तरीके से पंथदान को व्याख्या की है कि पंथदान जो है पंथदान को उन्होंने पाव आतिथ्य और पावित्व, पावित्व और पंथदान, ये पावित्व दान भक्तिविनय ठाकुर वर्णन की चार प्रकार का पावित्व दान होता है। पावित्व पंथदान किस तरीके से पवित्र होता है ना, आपने कोई तीर्थ स्थान में गए भ्रमण करने के लिए तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा में जाकर आपने दूसरा व्यक्ति को कुछ मदद भी किए हो, इसका कहते हैं पावित्र दान। इस पावित्र दान को भक्तिविनय ठाकुर चार प्रकार में विभाजित किए। और इसके बाद है महोत्सव, तो महोत्सव भक्तिविनय ठाकुर तीन भाग में इसको विभाजित किए। मैं सबसे शुरू बता रहा हूं कि महोत्सव तीन प्रकार है, एक है कि देवता उत्सव, दूसरा है आपका परिवार में कोई अच्छा घटना हुई उसके कारण आपने घर में कोई हवन वगैरह करा रहे हो कि कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, ये भी एक प्रकार का दान है। और तीसरा है कि दूसरे व्यक्ति को आनंद दान करने के लिए महोत्सव बनाना, इसको कहते कि महोत्सव दान। तो महोत्सव दान को भक्तिविनय ठाकुर तीन प्रकार में विभाजित किए। इस तरीका से भक्तिविनय ठाकुर इस द्वादश दान को वर्णन किए चैतन्य शिक्षा में ग्रंथ में। और द्वादश दान में सबसे जो पवित्र से पवित्र दान है उसका नाम है कि विद्यादान उत्सव, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने दिसंबर महीने को चुन के रखे है कि विद्यादान होता है। एक तरीका से मार्क्स शिष्य महीना है, दूसरा है कि विद्यादान, इसके लिए दिसंबर महीने में प्रभुपाद जी ने चुना कि यह दिसंबर महीना विशेष रूप से सबका मन में आनंद रहता है। भोपाल जी ने भारत को देखकर भी विद्यादान उत्सव नहीं बना है, भारत को देखकर भी मैराथन नहीं बना है, विदेश को देखकर, क्योंकि विदेश में सबसे ज्यादा छुट्टी मिलता है दिसंबर महीने। जैसा कि भारत में किस तरीके से काम करना पड़ता है कि एकदम मंडे टू सैटरडे काम करना पड़ता है, कितने घंटे का कुछ सवाल नहीं है, लेकिन विदेश में किस तरीके से काम करना पड़ता है, घंटे के हिसाब से काम करना पड़ता है कि आपको हफ्ता में 40 घंटे काम करना है, आपने मेरे को हफ्ता में 50 घंटे काम करना, इसी हिसाब का आपको पगड़ मिलता है, घंटे का हिसाब से मिलता है पगड़। आज का दिन में जैसा इंडिया में होता है कि आपने ड्यूटी किया तो महीना खत्म हो गया बाद में आपको पगड़ मिलता है, विदेश में इसी तरीके से नहीं, घंटे का हिसाब से पगड़ होता है, एक घंटा 10 डॉलर होता है, कोई जगह में एक घंटा 8 यूरो होता है, कोई जगह में 6 स्टार्लिन होता है, तो इसी तरीके से होता है। तो प्रभुपाद जी ने दिसंबर महीने को इसके लिए चुना कि सबसे ज्यादा विदेश में छुट्टी मिलता है दिसंबर महीने में, और दिसंबर महीना एक ऐसा महीना है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा है नहीं भी है तो घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमारे इधर दीपावली उत्सव होते हैं, सब जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, कोई गांव जाता है, कोई यात्रा में जाता है, तो इसी तरीके से दिसंबर महीने में विदेश में सबसे ज्यादा व्यक्ति घर से बाहर आ जाता है और अपना पूरा परिवार को लेकर घूमते रहता है इधर उधर। श्रीलोक उपाध ने विचक्षण व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोचा कि एक सबसे बड़ा मौका है दिसंबर महीना, जिस महीने में मैं अधिक से अधिक दूसरे के साथ में मिल सकता, जिसके लिए उन्होंने मैराथन उत्सव बनाए सब दिसंबर में। इस तरीके से भक्तिविनय ठाकुर इस द्वादश प्रकार का दान वर्णन किए चैतन्य शिक्षा ग्रंथ में। तो नंद महाराज ब्राह्मण को इसके लिए बुलाया कि पवित्र दान करो, इसी प्रकार पवित्र व्यक्ति को दान देना चाहिए जो कि दान लेने का लायक है, जिसके पास शक्ति भी है, और उसी दान लेने के बाद उसी प्रकार ब्राह्मण जो कि योग्य ब्राह्मण जिसको जगया शिष्टो उपविष्ट ब्राह्मण घोषणा चक्रतिपाद मन की जगया शिष्टो उपविष्ट ब्राह्मण तत्व आशीर्वाद मूलम। तो इसी तरीके से उन्होंने ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण जो कि आशीर्वाद दिला उसी प्रकार ब्राह्मण को उन्होंने दान दिए थे। और किस तरीके से दान दी कि आज के श्लोक में वर्णन किए, तो पहले तो उन्होंने बड़ा सुस्वादु भोजन करा है, तो भोजन के ऊपर काल का श्लोक में बोबाजी तात्पर्य विश्लेषण किए कि किस तरीके से भोजन होना चाहिए। चब चस्व लिज पियो चतुर्विदी भगवत प्रसाद साधन तीतान हरिभक्त संग। ये चतुर्विद प्रसाद उन्होंने बनाया, चब चस्व लिज पियो। आज इसी तरीका से ब्राह्मण को खिलाने के बाद नंद महाराज ने ब्राह्मण को दान दिए। क्या क्या दान दिए? बहुत सारे धन, बहुत सारे सोने। आज सबको मोनि मुक्त खोचित गाभी, सिर्फ ऐसे सीधा साधा गाभी नहीं दिए। क्योंकि नंद महाराज को पता था कि ब्राह्मण जो है ये इनका वैल्यू ये जान सकते हैं कि गाय का किस तरीके से सेवा करना चाहिए। गो रक्षा तथा कृषि रक्षा समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आज समाज को आगे बढ़ने के ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला कौन है? जो सज्जन ब्राह्मण जिसको कहते हैं, उपवीत तू सज्जन आराध्य भगवान। जो व्यक्ति दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं वो है उपयुक्त ब्राह्मण। इसके लिए नंद महाराज जी इसी प्रकार ब्राह्मण को बुलाए। आज ब्राह्मण को बुलाने के बाद बहुत प्रकार का व्यंजन खिलाए, जो कि काल का श्लोक का तत्पर्य में पोपा जी ने लास्ट में वर्णन की कि किस तरीका से नंद महाराज ने ब्राह्मण को भोजन कराया। आज भोजन कराने के बाद भोजन दक्षिणा स्वरूप उन्होंने एक गाइया दान दिया। किस तरीके से गाइया? न मोनि रत्न खोचितो उपलब्ध किया है, मतलब इसी तरीके से उन्होंने गाइया को दान दी कि जिस गाइया को ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, जिस गाइया को ब्राह्मण और जानते हैं कि इसी गाय को किस तरीके से मेरे को रक्षा करना है। गो रक्षा और कृषि रक्षा ये दोनों परंपर परस्परक होते हैं, दे आर को पैरल, एक दूसरे को बिना रह नहीं सकते। गो रक्षा कृषि रक्षा, आज का दिन में व्यक्ति अपना जीवन को निभाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक गदा का माफी भागते रहते हैं। लेकिन बोबा जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ध्यान से गोरक्षा और कृषि रक्षा को करे तो अपना जीवन को आराम से बिता सकते हैं। कोई भी जिसके पास अगर एक ही गाया रहे और थोड़ा खेती करने का जमीन रहे तो अपना परिवार को भी पाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं, नो नीड टू गो टू द आउटसाइड फॉर द सर्विस, कोई जरूरी नहीं है बाहर में जाकर काम करने का। जिसके लिए नंद महाराज ऐसा सुपात्र ब्राह्मण को घर में बुलाकर अपना पुत्र के माध्यम से उन्होंने इसी तरीके से दान बखाने की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान की जो बहुत ही सुंदर लीला है, ये जिस लीला का माध्यम से एक प्रबुद्ध लीला, जिस प्रबुद्ध लीला में भक्तिविनय ठाकुर भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर तात्पर्य विश्लेषण लिखी है कि प्रबुद्ध लीला सुनने से अपना हृदय शुद्धिकरण होता है, अपना चित्त शुद्धिकरण, टू बिकम ए प्यूरिफाइड इन अवर हार्ट इफ यू लिसनिंग केयरफुली। गोपाल जी भी कहते हैं कि इफ यू लिसनिंग केयरफुली अवर हार्ट बिकम ए प्यूरिफाइड, हमारा हृदय चित्त शुद्धिकरण हो सकता है इसी प्रकार लीला का माध्यम। जिसके लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परिषद को इसी तरीके से वर्णन किया कि महाराज परिषद का मन लालची था इसी प्रकार लीला का शोभन करना, कि मेरे को बाल्य लीला शोभन करना। भगवान की बाल्य लीला अतीब मधुर है। तात्पर्य जी में वर्णन भी किया है कि भगवान का अवतार लीला से बाल्य लीला अति सोती मधुर, अवतार लीला से बाल्य लीला अतीब सुंदर मधुर। जिस मधुर लीला को श्रवण के द्वारा अपना हृदय और हार्ट बिकम प्यूरिफाई, मेरा हृदय को आप सच बना सकते हो। जिसके लिए सुखदेव को सही बात विस्तारित रूप से परीक्षित महाराज को इस बाल लीला को आगे चलता हम बहुत ही बाल लीला को अध्ययन करेंगे, जो कि जिनावर का सुरा भी चल रहा है, इसके बाद बहुत सारे अध्याय है। तो बड़ा ध्यान से ये लीला को शोभन करने में गोपाल जी बताते कि अगर आपने जितने भी अगर पापी आप व्यक्ति हो, आपने बहुत सारे जीवन में ज्ञानत हो अज्ञानत हो बहुत सारे पाप कर्मों की हो, बहुत सारे अपराध भी आपने किए हो, लेकिन अगर थोड़ा समय अगर ध्यान से इस लीला को अगर अपने शोभन करें तो आपने जीवन को भी आप सुधार सकते हो। इसलिए गोपाल जी की कृपा से एक मौका हम लोग को मिलता है जिसके लिए नित्यम भागवत सेवा सुबह शाम गोपाल जी ने नियम बनाए ये भागवत कथा का। इसी भागवत कथा का फायदा लेने से हमारा जीवन शुद्धि होता है और हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। हाँ बोलो। भक्तिविनोद ठाकुर विद्यादान को बोल बताया इसी ग्रंथ में कि जो द्वादश प्रकार दान है सबसे बड़ा दान विद्यादान। इसके लिए कहते हैं कि विद्यादान को भक्तिविनोद ठाकुर ने चार भाग में विभाजित की। एक अति पवित्र सुंदरतम विद्यादान, क्योंकि इस विद्यादान में आपने दूसरे को कुछ ग्रंथ दे रहे हो तो उसी ग्रंथ के द्वारा वो उनका सिर्फ आध्यात्मिक जीवन को नहीं भौतिक जीवन को भी वो सुधार सकते। किस तरीके से एक व्यक्ति इसमें दो बजे वर्णन किया कि एक व्यक्ति बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन उनका जीवन में कुछ आनंद नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए रात को जब घर में आ जाते हैं उनको घर में आने के बाद वो देखते हैं कि उनका परिवार में कुछ शांति नहीं है, उनका पत्नी आकर लड़ाई करना चालू कर देते हैं, बेटा बेटी को लड़ाई होता है। तो उसी लड़ाई से दूर में रहने के लिए व्यक्ति अपना जेब में जब पैसा है ना तो पहुंच जाता है बिहार बार में, तो बिहार बार में जाकर थोड़ा समय आनंद लेने के लिए बिहार पी के आ जाते हैं। तो इसी प्रकार व्यक्ति अगर उसी ग्रंथ को मिले तो ग्रंथ को मिलने के बाद उसी ग्रंथ का अगर थोड़ा भी अध्ययन करे तो सोचते हैं कि मेरा जीवन में आनंद मिलने का एक ही तरीका है, वो है आध्यात्मिक प्रगति। तो आध्यात्मिक प्रगति का कारण ये ग्रंथों का सबसे ज्यादा वैल्यू, जिसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जितने प्रकार का दान है सबसे अधिक गुरुत्वपूर्ण दान है विद्यादान। आज अन्नदान भी एक प्रकार अच्छा पुण्य कर्म दान कहते हैं कि खाने से खिलाने वाले को ज्यादा आनंद मिलता है। कोई व्यक्ति अगर आप खाते हो लेकिन अगर आपने 10 व्यक्ति को खिलाए तो आपको ज्यादा आनंद मिलता है, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए। गोपाल जी वर्णन भी किए है कि अन्नदान भी एक महत्वपूर्ण दान है लेकिन वो मुर्गा का माफिक हो जाता है। मुर्गा किस तरीके से, जैसे आपने मुर्गा को कुछ खिलाए तो खाने के बाद वो तुरंत घास में ऐसा करके मुंह भिला लेते हैं, मतलब वो भूल गए थे 10 मिनट पहले उन्होंने क्या खाया उसको भूल जाते हैं। लेकिन वो मिलते हैं दान में कुछ पुण्य कर्म मिलते हैं, पुण्य फल होता है, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए मिलते हैं। जैसे कि मुर्गा खाने के बाद तुरंत मुंह मूछ लेते हैं तो उसी तरीके से भूल भी जाता है। लेकिन ये विद्यादान जो है ये कोई भूलने का सवाल है, समझ गए। हरे कृष्णा। आज इसका कुछ प्रश्न है इसका ऊपर? यस हाँ, मेरे को सुनाई नहीं पड़ता जरा जोर से। गोपाल जी ने जब विदेश में गए थे, हमारे भारतवासी का एक आदत था विशेष रूप से ये भगवत गीता, ऐसा कोई हिंदू परिवार नहीं है जिसके घर में नहीं है। लेकिन भगवत गीता को किस तरीके से लगा देते थे, भगवत गीता के ऊपर एक लाल कपड़ा डालकर ना उसका ऊपर एक चंदन तुलसी लगाते हाथ दिन, और उसी लाल कपड़े पर चंदन तुलसी डालते डालते को उसका ऊपर एकदम 6 इंच का लेयर हो गया। लेकिन गोपाल जी एक महान संत है जो कि विदेश में जाकर पहले ये भगवत गीता का ऊपर से लाल कपड़ा को हटाए, और लाल कपड़ा को हटाकर पूरा ये भगवत गीता पूरा व्यक्ति के सामने बांट दिए कि इसका अंदर है क्या आप देखो बहन। तो ये है आध्यात्मिक प्रगति, ये आध्यात्मिक शक्ति होना चाहिए जो कि गोपाल जी के पास से नित्य सिद्ध पढ़ाए तारे प्रेम वितरण, जो कि नित्य सिद्ध व्यक्ति होता है जो हर समय भगवान का बारे सोचते हैं वो इसी तरीके से शक्ति को प्रयोग कर सकते। जैसा नाम है अगर आज नहीं खुले एक दिन उनको खुलना ही पड़ेगा। गोपद का गीता का गोपद का कोई भी ग्रंथ का इतना शक्ति है, अगर आपने खरीद करके रख दिए हो घर में, ऐसा बहुत सारे मेंबर बनते हैं कि इतना मेंबर बनने के बाद उसको इतना ग्रंथ मिलता, बोलते स्वामी जी मैं कहा आपको मेरे जगह है ही नहीं, 5 साल पहले मैंने जिसको किताब देकर आए 5 साल बाद भी आपने गए तो किताब एजिटीज पढ़ाए उनके घर में। अगर उसी किताब नहीं भी पढ़े उसी किताब अगर घर में भी रहे उसी किताब का शक्ति के द्वारा आपका घर को आप पवित्र कर सकते हैं। समझ गए। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोल जय
श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। पंचाकल्प तरुवस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।